الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. एक मिनट बस. अब तो इस क्लास में हम आजकल हजरत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहम की किताब उलूमुल कुरान में से तफसीरुल कुरान का मौजू पढ़ रहे हैं, जो कि बेसिकली असलन तो हम मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर एक में से मुकदमा पढ़ रहे थे. तो उसमें से फिर हमने अब जो है वो तफसीरुल कुरान में जो गलत फहमियाँ लोगों को लगती हैं, तो उनके ऊपर जो हजरत ने लिखा है तफसील, तो वो हम अब इस किताब में से पढ़ना शुरू हो चुके हैं. तो इनमें से चंद गलत फहमियों में से बल्कि जो असल मौजू था, असल जो उनवान था, वो था तफसीर में गुमराही के असबाब. ठीक है, तो उसमें फिर पहला सबब जो है वो ना अहलियत, यानी आप पास ऐसी अहलियत नहीं है, ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप तफसीर कर सकें, लेकिन फिर भी आप तफसीर कर रहे हैं, तो ये गुमराही का एक सबब होता है. और फिर इसी ज़मन में कुछ गलत फहमियाँ, चंद गलत फहमियाँ ये भी हमने पढ़नी शुरू कर दी थी. उनमें से एक जो बड़ी पहली गलत फहमी क्या थी कि अल्लाह ताला जब कुरान मजीद में खुद फरमा रहे हैं वह लकद यस्सन अल कुरान लिज़िक्र, के हमने कुरान को आसान कर दिया, तो फिर ये मौलवी लोग जो है वो इतना मुश्किल बना करके क्यों कहते हैं कुरान मजीद को कि इतना मुश्किल है और ऐसे नहीं कर सकते और वगैरह वगैरह. तो ये हम पढ़ चुके हैं जी. एक मिनट, खवातीन में ये मैसेज नहीं भेजा था. तो बस ये जी. अब ये एक सबसे यानी एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है, जब अल्लाह ने आसान किया है तो फिर मौलवी इतना मुश्किल बना करके क्यों पेश करते हैं. फिर उसके बाद जो है वो दूसरी गलत फहमी, उलमा और इजारा दारी, यानी उलमा ने जो है ना, मौलवियों ने जो है, कुछ लोग जो है ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वो मौलवी कह देते हैं, कुछ लोग जो है वो ज़रा ज़्यादा अदब तमीज़ सीख गए हैं तो फिर वो उलमाए कराम कह देते हैं, लेकिन मकसद जो है वो वही है. तो इन्होंने जो है वो मोनोपोली बनाई हुई है, इजारादारी करी हुई है, और किसी को जो है ना वो घुसने नहीं देते इसके अंदर. अपना उन्होंने डेढ़ ईंट की अपनी मस्जिद बनाई हुई है वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में. अब उसके बाद जो आज का उनवान है वो है उलमा और पापाइयत. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, खुसूसन उन लोगों में कि जिन्होंने कुछ जो है वो ईसाइयत की तारीख वगैरह पढ़ी हुई है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में उनको इल्म है, तो वो फिर उलमा और पापाइयत वाला एतराज़ उठाते हैं, जो कि ये भी एक गलत फहमी ही है. तो इसको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बहुत ही तफसील के साथ एड्रेस किया है. तो इसमें फरमाते हैं पेज नंबर 369, जो कि शायद आपके पास स्क्रीन पे शेयर भी हुआ हुआ है. तो इसमें फरमाते हैं कि मज़कूरा एतराज़ ही को कदरे मुख्तलिफ उनवान से, यानी यही उलमा और इजारादारी वाला जो एतराज़ है ना, इसी को कदरे मुख्तलिफ उनवान से, बस एक डिफरेंट टाइटल से बाज लोग इस तरह ताबीर करते हैं कि इस्लाम में पापाइयत की कोई गुंजाइश नहीं है। पोपिज्म यानी पोप होना, जिस तरह से ईसाइयों क्या होता है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात तो ईसाई मजहब का खासा है कि उसमें बाइबल की तशरीह व तफसीर का हक सिर्फ पोप को हासिल होता है और किसी दूसरे शख्स को इससे मजाले इख्तलाफ नहीं होती, यानी किसी के मजाल नहीं होती कि वो उनसे इख्तलाफ करे। इस्लाम ने पापाइयत की जड़ काटी है, लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि इस दीन फितरत में भी कुरान करीम की तफसीर का सारा हक उलमा के एक मखसूस तबके के हवाले कर दिया जाए। ठीक है ना भाई, ये तो जमहूरी दीन है, ये तो जो है वो ईसाइयत के को जो है वो वालीन करार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों को, है सूरह फातिहा के अंदर, गैर मग़दूब अल मग़दूब जो है वो यहूदियों को और वालीन जो है वो ईसाइयों को। तो ना तो हम यहूदियों की तरह बन सकते हैं ना हम ईसाइयों की तरह बन सकते हैं, तो ये एतराज़ उठाया जाता है। लेकिन ये एतराज़ भी पापाइयत और उलमाए इस्लाम दोनों की बात को गलत समझने का नतीजा है। उलमा यानी इस्लाम के अंदर जो उलमा होते हैं किसी ऐसे मखसूस तबके या गुरोह का नाम नहीं है कि जिसकी बुनियाद रंगो नस्ल, जात पात, माल और दौलत या जाहो मनसब की खास शराइत पर हो। ये कोई ऐसा ग्रोह है ही नहीं रंगो नस्ल कि भाई ये खाली इसी जैसे कुरैश के लोग खाली तफसीर कर सकते हैं या अरब लोग जो है वो खाली तफसीर कर सकते हैं या इवन कि भाई ब्राउन लोग खाली तफसीर कर सकते हैं। चले अरब से थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो मशरक वुस्ता के रहने वाले जो ब्राउन स्किन के लोग होते हैं खाली वो तफसीर कर सकते हैं, और कोई तफसीर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हत्ता के खाली वो तफसीर कर सकते हैं कि जिनके आबाओ अजदाद मुसलमान थे, कोई कॉन्वर्ट तक तफसीर नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है हमारे दीन के अंदर। और बिल्कुल अभी के जमाने की बात है, चंद यानी 50 साल 60 साल पहले गालबन उनका इंतकाल हुआ, हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है ना, वो कौन थे, वो तो सिखिज्म से कन्वर्ट हुए हुए थे, सिख थे उनके माँ बाप और वो खुद भी जो है वो बचपन में सिख थे, वो कन्वर्ट हुए मुसलमान हुए और आलिम दीन बन गए और मुफस्सिर कुरान बन गए, राइट। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सरीन में आज के दौर के उनका शुमार होता है। ठीक है, तो किसी को आप अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का ना पता हो तो भाई हमारा क्या मसला है, वो तो उनका मसला है, उनको नहीं पता। तो कहते हैं कि जी ना उलमा किसी ऐसी लगी बंधी तंजीम का नाम है। ठीक है, जिस तरह तंजीम का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जैसे जमियत उलमा इस्लाम ये तंजीम है, जमियत उलमा पाकिस्तान ये भी एक तंजीम है, जमात इस्लामी ये भी एक तंजीम है, ये बाकायदा यानी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके बाकायदा बायलॉज होते हैं, जिनकी मेंबरशिप्स होती हैं। ठीक है ना, उलमा की ऐसी कोई तंजीम ही नहीं, इवन जमियत उलमा इस्लाम ये भी कोई ऐसी तंजीम नहीं कि जो उस तंजीम का हिस्सा बनेगा तो वही उसी की तफसीर जायज तफसीर होगी, और अगर कोई JUI का हिस्सा नहीं है तो उसकी तफसीर जायज नहीं होगी, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है तफसीर कुरान के साथ। ठीक है, बल्कि इल्म व फजल और सीरत व किरदार की कुछ मखसूस सिफात का हामिल हर शख्स आलिम दीन है, ख्वाह वो किसी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, कोई जुबान बोलता हो और नसब के एतबार से किसी भी खानदान से वाबस्ता हो। इस लिहाज से इस्लाम के उलमा और ईसाइयत के पापाओं में मंदरजा ज़ेल वाज़ह फर्क मौजूद हैं। ठीक है ना, यानी इजमाली फर्क तो हजरत ने एक पैराग्राफ के अंदर ही निपटा दिया और यही काफी हो जाना चाहिए हमारी समझ के लिए, लेकिन चूंकि हजरत की खसूसी तहकीक है इस वाले एरिए के अंदर, मजीद गहरी तहकीक है, तो हजरत ने फिर वाज़ह फर्क जो है ना फिर तफसील के साथ भी अलग अलग पॉइंट वाइज समझाए हैं। नंबर 1, पापाइयत एक ऐसे पेचीदा मजहबी निजाम का नाम है जो एक लगी बंधी आलमगीर तंजीम में जकड़ा हुआ है, बाकायदा ये एक एक ऑर्गेनाइजेशन है ये इनकी, इसमें बेशुमार ओहदे और मनसब हैं, इन ओहदों और मनासिब पर फायज होने वालों की तादाद मुकर्रर है, हर अहद हर ओहदा व मनसब पर किसी शख्स का तकर्रुर कुछ मुअय्यन इंसान करते हैं, जैसे एक कॉरपोरेशन के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पापाया जो है वो वाकई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यानी कोई और को थोड़ी तकरार कर सकता सवाय उसके अपने जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके, और वही उसको फराइज व इख्तियारात तफवीज करते हैं। कोई शख्स महज अपनी जाती अहलियत, इल्म व फजल या सीरत व किरदार की बुनियाद पर लाजमन इस तंजीम का कोई ओहदा हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि इस तंजीम के अरबाब इख्तदार उसे नामजद ना करें। ठीक है, इवन मदरसा, हमारे जो दारुल उलूम होते हैं वो भी एक तंजीम है, वो भी एक तंजीम है, लेकिन मुफस्सिर होने के लिए आपको किसी मदरसे का जो है वो बाकायदा तालिबे इल्म होने की भी जरूरत नहीं है। इवन मदरसा, इवन दारुल उलूम, उनका भी जो है वो आपको मेंबर होने की जरूरत नहीं है बाकायदा, क्योंकि वो भी एक तंजीम है। ठीक है, आलिम होने के लिए कोई जरूरत नहीं है मदरसा। ठीक है, वो तो दूसरी रीजंस हैं कि भाई वो आसान हो जाता है मदरसे के निजाम का आप हिस्सा बन जाएं, आप जो है वहां पे अपना नाम लिखवा दें, आपके लिए आलिम बनना आसान हो जाता है, लेकिन आप उसके बगैर भी आलिम बन सकते हैं। ठीक है, तो जब तक कि उस तंजीम के अरबाब इख्तदार उसे नामजद ना करें, और जब तक वो इस तंजीम में कोई ओहदा हासिल ना करे, मजहबी मामलात में उसकी हर राय कतई गैर मुअसर है, यानी ईसाइयों के यहाँ है ना, जब तक कोई ओहदा हासिल ना करे मजहबी मामलात में उसकी हर राय कतई तौर पर गैर मुअसर है, ख्वाह वो इल्म व फजल के कितने ही बुलंद मकाम पर फायज हो। इसका नतीजा ये है कि अगर कोई शख्स मजहबी उलूम में आला दर्जे की महारत हासिल कर ले, तब भी वो दलाइल के जोर से चर्च के मजबूत हिसार को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, और अगर ये मुअय्यन तंजीम अपनी कुतुब मुकद्दसा, अपने पैगंबरों और अपने असलाफ से बगावत पर कमर बांध ले, तब भी तंजीम से बाहर के किसी आलिम को, यानी किसी ईसाई आलिम को, उसके खिलाफ दम मारने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यानी उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, उसको कोई घास ही नहीं डालेगा अगर कोई जो है वो पापाइत की इस तंजीम का मेंबर नहीं है। तो अब वो कितना ही उसने रिसर्च करी हुई हो, कितनी उसने जो है वो किताबें पढ़ी हुई हो, या कितनी वो हक बात कर रहा हो, असल में हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यानी दीन इस्लाम के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, वो क्या बात होती है जी, अगर आपसे पूछें, आपसे तो हम पूछते नहीं इस वाली क्लास के अंदर जी, क्या चीजें दीन इस्लाम के अंदर इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि बात मानी जाए, क्या चीज है कि उसने जो है वो मदरसे में बैठ के तालीम हासिल करी हो, उसने यूनिवर्सिटी में बैठ के तालीम हासिल करी हो, उसके जो है वो खानदान जो है वो हो, सनद व निस्बत, इन्होंने लिखा सनद व निस्बत। ठीक है, व्हाट अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जो है वो किधर थी भाई, उनके हजरत जी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन थे शेख, उनकी कौन सी जो है वो नस्ल ऊपर जाती थी, उनको किससे जो है वो सनद मिली हुई थी। ठीक है, शरीयत व सुन्नत नहीं, हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दें। ठीक है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट जवाब दें, नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हर चीज उसके कॉन्टेक्स्ट में सही लगती है। ठीक है, तो हम जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पर पापाइत के कंट्रास्ट में इस्लाम की। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हक बात, हक बात, सच्ची बात। ठीक है ना, सच्ची बात जो है वो अहम है। अब सच्ची बात क्या है क्या नहीं है, ये बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग दलाइल, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंसेस परखा जाता है कि बात सच्ची है कि बात गलत है। एग्जिस्टिंग एविडेंसेस की बेसिस के ऊपर यू डिसाइड वेदर दिस इज ट्रू और वेदर दिस इज फॉल्स। ठीक है ना, असल चीज क्या है, हक है, हक, सच। ठीक है, ट्रुथ। नबी अलैहिस्सलाम सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के बाप दादा में से किसी के पास जो है वो नॉलेज नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने किसी भी मदरसे, किसी भी इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल नहीं करी थी, हत्ता के बैठ करके इल्म भी हासिल नहीं किया था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में डिमांड क्या थी? मुशरिकीन ने मक्का भी उनको माने और यहूदो नसारा भी उनको माने। क्यों माने भाई? खूबसूरत तो थे, राइट? बेहतरीन शक्लो सूरत थी, बेहतरीन जो है वो नस्ल भी थी, बेहतरीन जो है वो खानदान भी था, शराफत भी थी, सब कुछ था। किस बुनियाद पे माने? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो बात फरमाते थे वो एग्जिस्टिंग सर्कल, एग्जिस्टिंग प्रूफ्स के साथ, एविडेंसेस के साथ वो बात सच साबित होती थी, जो कि लोगों को पता थी ये बात। क्या अबू जहल को पता नहीं थी कि नबी अलैहिस्सलाम सच्ची बात कर रहे हैं? उनके अखलाक से भी वो बात सच्ची होती थी कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये अब कैसे झूठ बोलेंगे इस बात के ऊपर कि मैं अल्लाह का नबी हूं? मैं ये तो नहीं कह रहा, ये तो नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूं। आज सुबह खवातीन में भी ये बात हुई है, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी दावा किया कि मैं खुदा हूं, मैं खालिक कायनात हूं? राइट? कभी दावा नहीं किया। सिर्फ क्या दावा कर रहे हैं कि तुम उस बात को छोड़ दो जिसको तुम भी गलत समझते हो, तुम्हें पता है कि यह बात गलत है, तुम्हें पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिर्क नहीं किया था, तुम्हें पता है कि हर नबी ने आकर के किस चीज का पैगाम दिया था। मैं तुम्हें वही बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूं जो कि तुम्हें पहले से पता है कि यह सच है, ठीक है ना? हक हक बोला, उनके एग्जिस्टिंग दलाइल की बुनियाद पर हक बोला, जो उनके पास किताबें मौजूद थी, जो उनके पास कहानियां मौजूद थी, जो उनके पास लोगों के बताए हुए वाकयात मौजूद थे, उनकी बुनियाद पे नबी अलैहिस्सलाम ने बात करी थी कि मैं जो कह रहा हूं मैं वही तो कह रहा हूं जो तुम पहले से जानते हो कि ये सच है, कौन सी नई बात मैं तुम्हें कह रहा हूं? राइट? इनकार कर दिया। किस वजह से? हठ धर्मी की वजह से, जिद की वजह से, अनानियत की वजह से, किसी ने अपने पास मौजूद सनद की वजह से, राइट? किसी ने अपने खानदानी वकार की वजह से, किसी ने अपने जो है वो इजारादारी की वजह से, किसी ने अपने किसी और वजह से नबी अलैहिस्सलाम के हक को, जिसको वो मान जानते थे कि यह हक है, मानने से इनकार कर, ठीक है ना? तो हम आपसे जो है ना वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे इस वक्त, हम उस वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फरमाते हैं कि जी वहां पर क्या मामला है, ईसाइयों के क्या, जिसके जिसके ये ताने दे रहे हैं उलमाए कराम को कि तुमने तो पापाइयत का जो है वो निज़ाम स्टार्ट किया हुआ है, तो कह रहे कि नहीं भाई, पापाइयत तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वहां तो अगर वो खुदा के भी खिलाफ बात करना शुरू कर दे ना तो भी कोई बात उनके खिलाफ नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसके बरखिलाफ उलमाए इस्लाम की किसी भी जमाने में इस नौइयत की कोई आलमगीर तंजीम नहीं रही जिसमें दाखिले के बगैर मजहबी मामलात में लब कुशाई ममनू हो, ठीक है? कि जी इन्होंने तो दारुलूम देवबंद में नहीं लिया इन्होंने एडमिशन, राइट? या किसी दियोबंदी मदरसे से जो है ये फारिग़ुत तहसील नहीं है, या कोई बरेलवी का ये तो बरेलवी मदरसे से फारिग़ुत तहसील नहीं है, अहले हदीस वाला का अहले हदीस मदरसे से फारिग़ुत तहसील नहीं है। अब तो बस चाहे कुछ भी कहें, चाहे कितना ही हक बात करें, चाहे कितना ही जो है वो एग्जिस्टिंग एविडेंस की बुनियाद पर बात करें, नो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट है, राइट? ये बिल्कुल, जो ऐसा समझता है बिल्कुल गलत समझता है, और जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपनी कम इल्मी की वजह से कुछ गलत मुफक्किरीन के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि हम इनकी इसलिए बात नहीं सुनेंगे क्योंकि ये मदरसे के तालीम याफ्ता नहीं है, इस वजह से हम इनकी बात नहीं मानेंगे, इस वजह से ये गुमराह है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, राइट? जिन्होंने कहा ना कि वो इस वजह से गलत हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं करी, इस वजह से हम उनकी बात नहीं मानेंगे, इस वजह से वो गुमराह हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि इस बेसिस पर आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते इस्लाम के अंदर। आपको रिजेक्ट करना था, विच वॉज द राइट थिंग टू डू, बिकॉज क्यों रिजेक्ट करना था? इस वजह से क्योंकि वो जो बात कर रहा था वो शख्स, वो मुफक्किर, वो जो बात कर रहा था वो एग्जिस्टिंग एविडेंस के खिलाफ बात कर रहा था, वो अकली और नकली दलाइल दोनों के खिलाफ बात कर रहा था, इस वजह से वो गुमराही पर था, नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट एवर पार्ट ऑफ ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और ए मदरसा और ए दारुल उलूम, नो, दैट वॉज नॉट द रीजन वाई ही शुड हैव बीन रिजेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने तो ऐसी गलती नहीं करी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये वाली गलती करी, ठीक है? आज भी अक्सर लोग यही समझते हैं कि जी वो इस वजह से गलत हैं क्योंकि वो मदरसे के उस्ताद के साथ जो है वो नहीं बैठे थे, या उन्होंने जो है वो ऐसे नाच, भाई वो बात ही गलत कर रहे थे, खुदा के बंदे बात को देखो ना कि वो कितनी गलत बात कर रहा है। ठीक है, बहरहाल तो फरमाते हैं कि ये अब कौन फरमा रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुह, मेरे जैसे कोई जाहिल गवार नहीं ये बातें फरमा रहा है ना। ठीक है, तो इसके बरखिलाफ उलमा इस्लाम की किसी भी जमाने में इस नौयत की कोई आलमगीर तंजीम नहीं रही जिसमें दाखिले के बगैर मजहबी मामलात में लब कुशाई ममनू हो। ठीक है, इस बात को बोल तो गया हूं, ये फकीर जो है ना वो 1 मिनट के अंदर ये जुमला तो बोल गया है, एग्जिस्टिंग एविडेंस। लेकिन अगर आपको बात समझ में आई है तो याद रखिएगा इस वाली बात को, अगर आपको समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो समझने की कोशिश करें, किसी से पूछ करके समझने की कोशिश करें, लेकिन अगर समझ में आ गई है, यू बेटर रिमेंबर दिस, राइट, यू बेटर रिमेंबर दिस। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बरखिलाफ उलमा इस्लाम की किसी भी जमाने में इस नौयत की कोई आलमगीर तंजीम नहीं रही जिसमें दाखिले के बगैर मजहबी मामलात में लब कुशाई ममनू हो, जिसके उहदों का दायरा इख्तियार खास हो, और जिनमें तकर्रुर का फैसला कुछ मखसूस अफराद करते हैं। इसके बजाय हर वो शख्स जिसने माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी कुरान और सुन्नत और मुतअल्लिका उलूम में बसीरत और इस्लाह व तकवा पैदा कर लिया, वो आलिम दीन कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है। अब यहां पर जो है ना वो नस्बत की बात आ रही है, अब जो है वो सनद से हासिल किया तो वो आलिम दीन, ठीक है ना, वो आलिम दीन बन जाता है। लेकिन हक के सामने झुकना, उसके लिए आलिम की डिग्री, उसके लिए सनद, उसके लिए जो है वो बैठ करके इल्म हासिल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी कोई शर्त नहीं है। हाँ, तफसीर कुरान करने के लिए इतने जो है वो इन उलूम की जरूरत है, वो एक अलग टॉपिक है भाई। हम तो उलेमाए दीन, हम तो किसी के जो है ना वो हक बात की बात कर रहे थे पिछले, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल डिफरेंट था जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। तो इसकी बजाय हर वो शख्स जिसने माहिर असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी कुरान और सुन्नत और मुतअल्लिका उलूम में बसीरत और इस्लाह व तक्वा पैदा कर लिया हो, वो आलिम दीन कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है। मजहबी मामलात में उसके फराइज व इख्तियारात का तायुन मादूद चंद इंसानों का कोई गुरोह नहीं करता, चंद इंसानों को छोड़ करके कोई उनका तायुन नहीं करता, बल्कि उसके इल्म तकवा की बुनियाद पर आम मकबूलियत उसका फैसला करती है। ठीक है, मजहबी मामलात में उसके फराइज इख्तियारात का तायुन मादूद चंद इंसानों का कोई गुरोह नहीं करता, यानी सॉरी ये मैंने इस जुमले को गलत बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी, ये तो उलमाए इस्लाम की बात हो रही है ना। तो उलमाए इस्लाम के बारे में क्या है कि हर वो शख्स जिसने माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी कुरान सुन्नत और मुतअल्लिका उलूम में बसीरत और इस्लाह तक्वा पैदा कर लिया, वो आलिम दीन कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है। मजहबी मामलात में उसके फ़राइज़ व इख्तियारात का तायुन मादूद चंद इंसानों का कोई ग्रो नहीं करता, यानी चंद इंसानों का भी ग्रो नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके इल्म व तक्वा की बुनियाद पर आम मकबूलियत उसका फैसला करती है। ठीक है, देखें एक एक डिफरेंस जो है ना, एक फर्क जो है वो अपने जहन के अंदर वाजे रखें, ठीक है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की डिस्कशन जो है ना ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, बल्कि हो सकती है कुछ लोगों के लिए जिनको बात समझ में नहीं आई। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर रखें अपने जहन में कि एक होता है जिस चीज का इल्म ना हो, जिस चीज का इल्म ना हो उस चीज के बारे में दीन से फतवा देना, ठीक है ना, उस चीज के बारे में जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से डिराइव करके फतवा देना, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर फतवा आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में दे रहे हैं, या आप जो है वो इस्लामिक बैंकिंग, आप जो है बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में फतवा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए किस चीज की जरूरत है, इसके लिए आपको जो है वो जो दीनी उलूम पहले से मौजूद हैं उनमें गहराई की जरूरत है ना, उनमें गहराई की जरूरत है, तभी आप फतवा दे सकते हैं एक नई सिचुएशन के बारे में, ठीक है ना। उसी तरीके से कुरान मजीद की कोई आयत है, ठीक है ना, उस कुरान मजीद की आयत के बारे में जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि जी ये अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, अब इसकी तफसीर करेंगे ना, किस बुनियाद पे तफसीर करेंगे, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद है, कुरान मजीद की दूसरी आयात मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद हैं, सहाबा इकराम के अकवाल मौजूद हैं, ताबईन तबा ताबईन के अकवाल मौजूद हैं, अरबी जुबान की तफसीली नॉलेज मौजूद है, तो अब इन सब की बुनियाद पर आप कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर करेंगे। अगर आपके पास ये नॉलेज मौजूद नहीं है, आप तफसीर नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहां पे बता रहे हैं। ठीक है, हमने जो थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था, हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हक के सामने झुकना, यानी कि जो चीज पहले से डिसाइडेड है कि ये हक है, तुम भी मानते हो कि ये हक है, तुम भी मानते हो कि ये हक है, ठीक है ना? अब तुम बस उस पे अमल नहीं कर रहे, तुम उस पे अमल नहीं कर रहे, तुम उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, पता तुमको भी है कि ये हक है। अब कोई आता है बढ़ई, राइट, कारपेंटर हबीब नजार, राइट, हबीब नजार जिसका सूरह यासीन में जिक्र है, वो क्या था? कारपेंटर थे ना वो। ठीक है, हबीब नजार साहब आते हैं, उनके पास ना जो है वो तफसीली उलूम है, ना उनको जो है कुछ पता, लेकिन उनको इतना पता है कि भाई ये बात हक है ना, ये बात सच है, ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, ये बातें सच है। अब वो लोगों के सामने कहते हैं कि भाई तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते हो? ठीक है ना, वो अपनी तरफ से कोई फतवा तो नहीं दे रहा, वो अपनी तरफ से कोई तफसीर तो नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ याद दिला रहा है ना कि भाई ये तो सच है जिसको तुम पहले ही मानते हो सच है, पर तुम उसको एडमिट क्यों नहीं कर रहे, तुम उसके आगे सबमिट क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? अब उसको क्या ये कह सकते हैं, वो ये तुम तो कारपेंटर हो, तुम्हारी मजाल कैसे कि तुम हमें जो है वो ये बात कहो? तुम तो कारपेंटर हो, तुम तो नज्जार हो, यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज यू डोंट हैव एनी सनद, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नस्बत, इस वजह से हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो फिर क्या जवाब देंगे आप? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके पास तो सनद नहीं है, इसके पास तो नस्बत नहीं है, इसके पास तो वो गहरा इल्म नहीं है, इस वजह से हम तो इसकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या सही बात है ये? जी जवाब देना, क्या सही बात है कि चूंकि ये नज्जार है इस वजह से हमने इसकी बात नहीं माननी? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं नजर आता? फतवा देना एक अलग चीज है, हक सामने रख देना कि भाई तुम जिसको खुद कहते हो कि यह हक है, तुम क्यों नहीं उसको मान रहे हो? क्या ये दोनों बातें अलग नहीं है? क्या इन दोनों के दरमियान फर्क नजर नहीं आता हमें? इसके लिए आपको सनद की भी जरूरत है, इसके लिए आपको तहकीकी इल्म की भी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत नहीं है इस चीज की, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग सिनारियो पूरी की पूरी। ठीक है, इन्होंने डरते डरते डायरेक्ट मैसेज में जवाब दिया, बाकी सारे के सारे या तो उनको समझ में नहीं आई बात, या उनको सांप सूंघ गया। क्या ख्याल है? सांप मौजूद है बहुत ज्यादा जो सूंघ रहे हैं। नहीं कोई, क्योंकि वो उनको फतवा नहीं दे रहा है। जी वो उनको फतवा नहीं दे रहा है, उनको तो उनकी बात याद दिला रहा है। ठीक है ना भाई, नजार साहब जो हैं वो फतवा तो नहीं दे रहे ना, वो तफसीर तो नहीं कर रहे ना, वो तो एग्जिस्टिंग चीजों को जो है वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। ठीक है ना, उसकी तो माननी पड़ेगी भाई, चाहे वो नजार हो चाहे वो जो भी हो, उसकी तो माननी पड़ेगी। नहीं मानेगा तो फिर सजा मिलेगी फिर उसके ऊपर, और क्या, इतनी सी बात है। बहरहाल, तो आगे फरमाते हैं कि एक मुसलमान आलिम नहीं सॉरी वो आलमगीर खाने का मुस्तहिक हो जाता है, मजहबी मामलात में उसके फराइज व अख्तियारात का तायुन मादूद चंद इंसानों का कोई ग्रोह नहीं करता, बल्कि उसके इल्म व तक्वा की बुनियाद पर आम मकबूलियत उसका फैसला करती है। ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की आम मकबूलियत थी कि भाई ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, इल्म और तक्वा की सॉरी इल्म और तक्वा की बुनियाद पर आम मकबूलियत उसका फैसला करती है आलम दीन होने के लिए। खैर, आलम दीन होने के लिए कि भाई कौन सा आलम दीन जो है ना वो उसकी हम बात मानेंगे, तो किस बुनियाद पर? उसके इल्म और उसके तकवा की बुनियाद पर। ठीक है ना, जैसे फुकहाए कराम जो हैं वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर नहीं बल्कि इल्म और तकवा की बुनियाद पर उनको जो है वो फुकहा का मनसब मिला है, और आज भी जो बड़े बड़े हमारे अकाबरीन हैं उन सबको उनके इल्म और तकवा की बुनियाद पर ये मनसब मिला है। यानी लोग मनसब क्या मिला है? लोगों में मकबूलियत, पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग देम एंड स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग देम। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इल्म एंड तक्वा। चर्च के अरबाबे बस्त व कुशाद अपने अहदो मनसब के जोर पर अपनी बात मनवाते हैं, अपने ओहदा व मनसब के जोर पर अपनी बात मनवाते हैं, और एक मुसलमान आलिम अपने इल्म व फजल और सीरत व किरदार की कुव्वत से ये मकाम हासिल करता है। एक मुसलमान आलिम किस बुनियाद पर यह मकाम हासिल करता है? इल्म व फजल और सीरत व किरदार की कुव्वत से ये मकाम हासिल करता है। ठीक है, कि उसका फतवा जो है वो चलता है, उसके फतवे को जो है वो लोग अहमियत देते हैं, या उसकी तफसीर को जो है लोग अहमियत देते हैं। ठीक है ना, किस बुनियाद पर? उसके इल्म व फजल और सीरत व किरदार की कुव्वत पर। ठीक है ना, ये बिल्कुल ये उलमाए कराम वाला वाली बात चल रही है। ठीक है, तो चर्च वाला बिल्कुल भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। और एक अच्छा, वहां क्या होता है? चर्च के मुतशद्दद कवानीन किसी शख्स को वाजिबुल इत्तेबा और काबिले तकलीद करार देते हैं, और यहाँ इस मामले में असल फैसला कुन कुव्वत उम्मत का इज्तिमाई जमीर है। उम्मत का इज्तिमाई जमीर, ठीक है, यानी उनका अपना कॉन्शियस कॉन्शियंस जो होता है, कॉन्शियंस। कलीसा के ओहदेदारों की एक तादाद मुकर्रर है, और इस तादाद के पूरा हो जाने के बाद कोई शख्स कितना ही बड़ा आलिम हो, अपने जमाने के कलीसा के किसी फैसले से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इसके बरअक्स उलमाए दीन की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। इल्मे दीन की जरूरी शराइत पूरी करने के बाद हर शख्स आलिम दीन के हुकूक हासिल कर सकता है। क्या है आलिम दीन के हुकूक? इज्जत और उसकी बात को समझना, बात को सुनना, ठीक है ना, और उसके जो है वो अमल की कोशिश करना, ये आलिम दीन के हुकूक हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो एक तख्त बनाया जाएगा, उसके ऊपर उनको बिठाया जाएगा, या उनको जो है ना वो लादा जाएगा कुछ किस्म के अनवाओ, या उनको जो है वो हलवे खिलाए जाएंगे, ये आलम दीन का हक है। नहीं, आलम दीन का हक ये है कि उसको इज्जत दी जाए और उसका जो इल्म है उससे फायदा उठाने की कोशिश की जाए। ठीक है, नंबर टू। तो नंबर वन क्या था कि पापाइत एक ऐसे पेचीदा मजहब मजहबी निज़ाम का नाम है जो एक लगी बंदी आलमगीर तंजीम में चखड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब हमने नंबर वन में पढ़ लिया। अब नंबर टू क्या है? फिर कलीसाई निज़ाम में मजहब और अकायद की तशरीह व तफसीर के तमाम इख्तियारात फर्द वाहिद पर मरकूज हो जाते हैं, जिसे पोप कहते हैं। इस पोप को मजहब के करोड़ों पैरुओं में से, मजहब के करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं उनमें से कुल 70 कार्डिनल्स मुंतखब करते हैं। इस पोप के इख्तियारात ये हैं कि वो रईसुल हवारीन जनाब पुतरस का तनहा खलीफा है। पीटर पुतरस, गालबन पीटर ही का जो है वो उर्दू का तर्जुमा होता है। तो वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारीन थे, तो उनमें जो सबसे सीनियर हवारी थे जनाब पुत्रस, उनका ये वह तनहा खलीफा होता है। यानी जो जो वेटिकन का जो सबसे बड़ा पोप होता है, यानी कैथोलिसिज्म जिसको कहते हैं, इसमें वेटिकन जो है वो उनका मरकज है, दारुल खिलाफा है उनका मजहबी, और उसका जो इंचार्ज होता है उसको दी पोप कहते हैं ना, पोप जॉन पॉल, जैसे हमारे बचपन में उनका बड़ा नाम सुनते थे, उस वजह से नाम याद रह गया। तमाम मजहबी मामलात में आखिरी अथॉरिटी है। मजहब की तशरीह के मामले में हर मसीही के लिए वाजिबुल इत्तबा है। उसकी जुबान कानून की हैसियत रखती है, और किसी बड़े से बड़े आलिम को उससे इख्तलाफ का हक नहीं पहुंचता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उसके इख्तियारात की तशरीह इन अल्फाज में की गई है कि लिहाजा पोप अकायद व नजरियात के मामले में मुक्तदरे आला होने की हैसियत से इसी इस्तेनाद यानी अथॉरिटी और इसी मासूमियत इन्फालिबिलिटी का हामिल है, जिस तरह पूरा कलीसा वो कानून साज और जज की हैसियत वो तमाम इख्तियारात रखता है, वो कानून साज और जज की हैसियत वो तमाम इख्तियारात रखता है जो पूरी कलीसा को हासिल है। इनका जो पूरा जो जो सिस्टम है उसके अंदर जो पोप जो है ना वो मुक्तदरे आला सबसे बड़ा जो है वो उसकी अथॉरिटी है। गौर फरमाइए कि पूरी तारीख इस्लाम में आज तक किसी भी आलिम दीन ने कभी इस मुतलकुल एनानी का दावा किया है? कभी किसी ने किया इस तरह की मुतलकुल अनानी का, जी के आई एम दी अथॉरिटी एंड आई हैव टू बी एक्सेप्टेड एंड आई हैव टू बी फॉलोड, कभी किसी ने दावा नहीं किया मुसलमानों में। हाँ ये वो क्या कहते हैं शियाओं के अंदर वो है आयतुल्ला, ठीक है, और जो है वो इस्माइली, वो भी शियाओं की ही एक फिरका है, तो वहां पर जो है वो इस्माइली के होते हैं उनके, है हाँ वही उसूल, यही उसूल शिया आगा खानी और बोहरी वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो भाई उनको कौन कह रहा है कि आप उनको फॉलो करें, वो कौन से इस्लाम के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। अहले सुन्ना वल जमात, ठीक है ना, जो कि नाजिया फिरका जिसको कहते हैं, जो कि 72 फिरकों में से एक फिरका जो है वो सिर्फ निजात याफ्ता है, हदीस मुबारक से जो साबित है, तो उसमें तो कभी भी इस किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं आई ना कि जी ये वो अहमद गजाली बहुत बड़े जो है वो हुज्जतुल इस्लाम अल बालिगा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, तो बस ही इज दी अथॉरिटी, नो कभी भी नहीं, राइट। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, नो ही इज नॉट दी ओनली अथॉरिटी, राइट। इब्ने जौजी रहमतुल्लाह, नो ही इज नॉट दी ओनली अथॉरिटी। इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, नो ही इज नॉट दी ओनली अथॉरिटी, राइट। उनसे भी बड़े जो हमारे 4 आइमा गुजरे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तीसरा नंबर कि फिर ईसाई अकायद के मुताबिक वो नजरियाती मसाइल का ऐलान करते हुए मासूम और खताओं से पाक होता है, ठीक है, उनके नजदीक। चुनाचे ब्रिटानिका में है कि लिहाजा पोप के दो खसूसी इम्तियाजात हैं, एक ये कि जब वो मुक्तदरे आला होने की हैसियत से अकायद के बारे में कोई ऐलान करे तो वो मासूम और गलतियों से पाक होता है, और दूसरे ये कि वो मजहब के तमाम पैरुओं पर हाकिमाना इख्तियार कामिल यानी सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शन रखता है, बिल्कुल हाकिमाना इख्तियार और कामिल इख्तियार उसके पास होता है। ये दोनों इस्तेहकाकात जिनका दावा और इस्तेमाल सदियों से पोप करते आए हैं, उनको जुलाई 1870 की वेटिकन काउंसिल में वाजह दस्तूरी शक्ल भी दे दी गई। यानी पहले जो है ना बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होता था, लेकिन प्रैक्टिकली इसी तरह से मामला चलता था, लेकिन 1870 के अंदर इसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट की भी जो है वो शक्ल दे दी गई, और ये वही वेटिकन वालों की बात हो रही है जिसको कैथोलिसिज्म भी कहते हैं। बाकी उनके जो दूसरे हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, जो वो यानी जिसको ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता है, रूस में जो है वो जिनको ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो अलग हैं। प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो तो वैसे ही इस पूरे निज़ाम से बगावत के नतीजे में प्रोटेस्टेंट्स पैदा हुए हैं, लेकिन प्रीटी मच जो असल क्रिश्चियनिटी जो है ना जिसको कि ये सारे आपके न्योकॉन्स जिसको फॉलो करते हैं अमेरिका यूरोप के, जो असल जो जो जिनका बेसिकली पूरी दुनिया के ऊपर इसका कंट्रोल है, तो वो तो सारे के सारे कैथोलिक्स हैं, ठीक है ना, प्रीटी मच सारे के सारे जो है वो कैथोलिक्स ही हैं। तो इसके बरखलाफ ये तमाम उलमाए इस्लाम का मुत्तफ़िका अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद कोई फर्द मासूम नहीं है और हर एक से गलती हो सकती है, इवन सहाबाए कराम, वो भी मासूम नहीं है, महफूज हैं। मासूम का लफ्ज जो है वो उनके लिए संभव नहीं होता, और मासूम का दर्जा भी उनके उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ अंबियाए कराम के लिए, और हर एक से गलती हो सकती है। सहाबा की बेहतरीन बात क्या थी, गलती होती थी उससे वो सीखते थे, तौबा करते थे, गलती के ऊपर इसरार नहीं करते थे, बेहतरीन स्टूडेंट्स थे, बेहतरीन स्टूडेंट्स थे, बेहतरीन जो है वो फॉलोअर्स थे, ठीक है ना, और बेहतरीन वफादार थे। ये सहाबा की अजमत है, ये कोई थोड़े कि वो मासूम थे। चुनाचे उलमाए इस्लाम पूरी आजादी से एक दूसरे पर तनकीद करते आए हैं, और ये सिलसिला अहदे सहाबा से अब तक जारी है, ठीक है ना, यानी अहदे सहाबा में सहाबा ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद करी, और तनकीद पता ही है कि कितना आगे तक भी गई, हत्ता के मुशाजराते सहाबा भी जो है वो हैं, राइट। अभी पीछे हमने पढ़ा है ना वो जो कुरान मजीद की कंपाइलेशन की जो सारी की सारी वो हुई थी, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजील तारा जो हैं उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजील तारा से इख्तलाफ किया कि भाई आपने जो है वो क्यों ये जो बाकी जो जो कराते हैं उनके जो है वो मसहफ को जो है वो क्यों जलवा दिया आपने, या जो भी वो मुझे एग्जैक्टली उसके अल्फाज अभी याद नहीं आ रहे, यानी आपने जो है वो मैं नहीं दे रहा अपना अपना मसहफ जो है मैं जलने के लिए नहीं दे रहा, राइट। तो सहाबा ने इस लेवल के ऊपर भी इख्तलाफ किया आपस में, ठीक है, इल्मी इख्तलाफ जिनको कहते हैं, ये कोई जाती कोई इख्तलाफात के थोड़ी थे। तो ये सिलसिला अहदे सहाबा से अब तक जारी है। इसी का नतीजा है कि कोई मशहूर से मशहूर आलिम अगर कुरान और सुन्नत की तशरीह में कोई गलती करे तो दूसरे तमाम उलमा उसकी गिरफ्त करके उम्मत को उसके नताइजे बद से महफूज कर सकते हैं। यानी उनको फुल अथॉरिटी और फुल जो है ना उनको इजाजत है हमारे दीन के अंदर, और करते भी हैं। इसी इसी तरीके से तो अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत करी है। ये जो हम कहते रहते हैं बार बार, प्रो मौलवी तबका है ना, कितना फख्र से ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्फाज कुरान की हिफाजत जो है वो हुफाज कराम से करवाई है और मानी कुरान की हिफाजत जो है वो उलमाए कराम से करवाई है। तो क्या मतलब है भाई इसका, मानी कुरान की हिफाजत उलमाए कराम से करवाई है? तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहूदियों ने कुरान में तब्दीली करने की कोशिश करी तो उलमाए कराम जो है वो उनके रास्ते की रुकावट बन गए, और कादियानियों ने कोशिश करी तो उलमा रुकावट बन गए, और शियाओं ने कोशिश करी तो उलमा रुकावट बन गए। व्हाट अबाउट विद इन द उलमा? विद इन द उलमा नहीं हो सकती किसी से गलती, तो दूसरे उलमा जो है वो रुकावट बनते हैं फिर उसके रास्ते में। ठीक है, तो बाहर वालों से खाली हिफाजत की जाती है या कभी अंदर भी तो गलती हो जाती है ना? और बेशक जो है वो नादानिस्ता तौर पे गलती हुई हो, कुछ समझ में कुछ जो है वो इज्तिहाद की गलती हो गई हो, किसी वजह से भी गलती हो सकती है नादानिस्ता तौर पर, राइट? तो उससे भी तो हिफाजत की जरूरत पड़ती है। तो उलमाए कराम ने खाली बैरूनी हिफाजत तो नहीं करनी, अंदरूनी भी तो हिफाजत करनी है ना। ठीक ना, आप अंदरूनी को कहें कि नहीं जी नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो हसद कर रहे हैं, है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की क्लास में बल्कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, अगर किसी ने सुना कि अगर एक आलिम दूसरे आलिम की गलती की जो है निशानदेही कर रहा है तो कह रहे नहीं जी ये हासिदीन में से हैं, ये हसद कर रहे हैं। तो क्या मतलब, अब हसद के इल्जाम के डर में जो है वो अब आपको किसी को कोई कह ही नहीं सकते कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं है, ऐसे होना चाहिए, राइट? ये क्या ये, अगर ये एटीट्यूड शुरू हो गया या इस एटीट्यूड को जो है वो अगर आपने छोड़ दिया तो फिर हिफाजत कैसे होगी? ठीक है, तो दूसरे तमाम उलमा उसकी गिरफ्त के लिए करके उम्मत को उसके नताइज बद से महफूज कर सकते हैं। ठीक है, उलमाए कराम तो इल्मी एतबार से हिफाजत करते हैं, हमारे दीन ने तो बाकायदा हुदहुद का भी नजरिया दिया है। हुदहुद का कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने जलीलुल कदर नबी हैं और क्या उनका मुकाम है कि उन्होंने यानी उनके, वैसे तो हर नबी जो है वो जानवरों की बोली जानता है, हर नबी जो है वो यानी जिन भी उसके ताबे होते हैं और जानवर भी उसके ताबे होते हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या थी कि इनके सल्तनत के अंदर देवर एक्टिवली इन्वॉल्व, उनके दरबार के अंदर जिन मौजूद होते थे, जानवर मौजूद होते थे, परिंदे मौजूद होते थे, किसी दूसरे नबी के दरबार में ना जिन मौजूद होते थे, ना जानवर होते थे, ना परिंदे होते थे। ये मतलब नहीं है कि दूसरे नबियों को जो है जानवरों की बोली नहीं आती थी, या दूसरे नबी जो है वो उनकी जो ईमान वाले जिन होते थे वो उनकी इतबा नहीं करते थे। करते थे, ऑफ कोर्स करते थे, ईमान वालों के लिए वक्त के नबी की इतबा लाजमी है वरना वो ईमान वाले नहीं रहेंगे। और जानवर भी नबियों की तआज़ीम करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या मुकाम था कि उनके दरबार में मौजूद होते थे और उनकी आर्मी में साथ साथ चल रहे होते थे। उनके मामले में अल्लाह ताला ने एक हुदहुद परिंदों को भेजा कि मैं आपको वो बात बताता हूं जो आपको नहीं पता, राइट? मैं आपको वो बात बताता हूं जो आपको नहीं पता, और फिर जो है वो मलका बिल्कीस के बारे में सारी तफसीलें बता रहा है। फतवा तो नहीं दे रहा था वो हुदहुद, क्या ख्याल है? हुदहुद जो है वो आकर के कोई तफसीर कर रहा था किसी बात की वक्त के नबी के सामने? वो कोई फतवा दे रहा था किसी बात के ऊपर वक्त के नबी के सामने? भाई एक दुनियावी उमूर के बारे में एक चीज थी, आकर के बता रहा था कि भाई ये मैं ये देख करके आया हूँ, प्लीज आई एम टेलिंग यू अबाउट हालात हाजरा, राइट? एक न्यूज आइटम मुझे मिला है, वो न्यूज आइटम मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप जो है फैसला करें क्या करना है इसका, आप वक्त के नबी हैं, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब उसको हद अदब और जो है वो तुम्हारी जुबान कैसे तुम्हारी खुल गई, तुम चुप रहना चाहिए था तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था, ना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात कही और ना जो है वो उनके दरबारियों में से किसी ने ऐसी बात कही। ठीक है ना, तो हमारे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस किस्म के वाकयात भी रखे हैं। तो अगर हुदहुद जो है वो कोई बात कर सकता है तो वक्त के जो दूसरे उलमाए कराम हैं वो दूसरे उलमाए कराम के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये तो एक मिजाज है ना, ये मिजाज जब आप खत्म कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद शैतान को मौका मिल जाता है उसके बाद अपने काम करने का। तीन पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, वक्त चूंकि चूंकि ख़त्म हो चुका है, इस वजह से चौथा पॉइंट इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल या बात करनी हो तो लिख के कर सकते हैं। ये शिया खानी और बोरी जो आपने लिखा है ना, ये तो पैदा ही यहूदियों और ईसाइयों के असर से हुए हैं इस्लाम के अंदर। इसी वजह से ज़ाहिर है वो उन्हीं के तरीके और तौर तरीके के मुताबिक उनके यहाँ सिस्टम चलते हैं। चलें यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।